पेज 19, लेसन नंबर 4। हवा से बना मैदान रेगिस्तान। दीप्ति हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। उसने किताब में ऊंट के बारे में पढ़ा था कि वह बहुत ऊंचा जानवर होता है और रेगिस्तान में लोग ऊंट पर बैठकर आते जाते हैं। हिमालय में तो ऊंट होते नहीं। सो दीप्ति को समझ ही नहीं आया कि ऊंट आखिर कितना ऊंचा होगा। उसे लगा शायद घोड़े से थोड़ा ऊंचा। फिर उसकी अध्यापिका ने बताया कि नहीं, घोड़े से तो बहुत ज्यादा ऊंचा। दीप्ति समझ तो नहीं पाई पर बात दिमाग में रह गई। स्काउट गाइड कैंप में जब जयपुर जाने का मौका मिला तो उसने मम्मी को जयपुर भेजने के लिए मना लिया। उसे पता था कि जयपुर राजस्थान में है और ऊंट भी वहीं होते हैं। उसे लगा कि ऊंट देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पेज 20। रेलगाड़ी जैसे ही जयपुर स्टेशन पहुंची दीप्ति चारों तरफ ऊंट ढूंढने लगी। उसे थोड़ी निराशा हुई कि सड़क पर पहुंचकर भी ऊंट नहीं कहीं दिख रहा है। लोग ऊंट पर नहीं गाड़ियों में आ जा रहे थे। गाइड कैंप जिस स्कूल में लगा था दीप्ति वहां भी पहुंच गई पर ऊंट नहीं दिखा। उतरते हुए उसने बस के ड्राइवर से पूछ ही लिया, जयपुर तो राजस्थान में है, फिर यहां ऊंट क्यों नहीं दिख रहे? ड्राइवर ने हंसकर बताया कि जयपुर तो शहर है, यहां तो पक्की सड़कें बन गई हैं, तो लोग मोटर गाड़ी से ही आते हैं। ऊंट तो मरुस्थल में सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। पर ड्राइवर ने वादा किया कि वह सारे बच्चों को ऊंट की सवारी के लिए ले जाएगा। शाम को सारे बच्चे जब जयपुर घूमने गए तो उन्होंने ऊंट की सवारी भी की। बड़ी मुश्किल से वह सवारी कर पाई। उसने सोचा कि इतनी कठिन सवारी पर लोग मरुस्थल में कैसे चढ़ते होंगे। फिर उसे लगा यह मरुस्थल क्या है? उसने अपनी अध्यापिका से पूछा तो उन्होंने विस्तार से मरुस्थल के बारे में बताया। भारत के पश्चिमी छोर पर रेगिस्तानी इलाका है। यह थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और राजस्थान राज्य में पड़ता है। अरावली पहाड़ों के पश्चिम में जाने पर हम थार का मरुस्थल देख सकते हैं। पेज 21। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है। वहां दूर दूर तक रेत के मैदान और सिर्फ रेत फैली हुई दिखती है। पेड़ पौधे बहुत कम नजर आते हैं। वहां वैसे ही पेड़ पौधे छिटपुट दिखते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, जैसे नागफनी, कंटीली झाड़ियां, खेजड़ी, कीकर, बबूल, बेर आदि के पेड़। रेतीला इलाका दूर दूर तक बड़ा सादा दिखता है। रंगों की भरपाई करने के लिए ही शायद यहाँ के लोग अपने जीवन में बहुत चटक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। उनके कपड़ों, घरों की सजावट आदि सब में गहरे लाल, केसरिया, हरे, पीले, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं। अपने देश में सबसे कम बारिश थार मरुस्थल में होती है। साल भर में सिर्फ 8 से 10 बारिश, वह भी बिल्कुल हल्की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 साल पानी गिरता ही नहीं। ऐसे इलाके में घने जंगल तो नहीं उग सकते। दूर दूर में कुछ एक पेड़, कंटीली झाड़ियां व घास ही उग पाते हैं। ज्यादातर घास व पौधे तो बारिश में उगकर तुरंत खत्म हो जाते हैं। पेज 22। थार के कुछ हिस्से तो पथरीले हैं, बाकी में खूब सारे रेत का जमाव है। रेत के बड़े बड़े टीले हैं जो तेज हवा में उड़ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस पथरीली व रेतीली भूमि में दूर दूर पर कहीं कहीं गांव व बस्तियां हैं। कुछ लोग हर साल दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। अब सवाल है, पानी कहां से मिलेगा? तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसी जगह में लोग कैसे रहते हैं, उन्हें पानी कहां से मिलता है? पानी के लिए यहां कुएं हैं, मगर पानी बहुत गहराई में मिलता है। कई जगहों पर पानी खारा होता है। जहां जहां मीठे पानी का कुआं होता है, लोग दूर दूर से आकर पानी भरते हैं। वे पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। बरसात में बरसने वाले पानी को वे व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। वे अपने घर के आंगन में जमीन के नीचे पक्की टैंकी बनाकर उसमें बरसात का पानी जमा करते हैं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा साल भर खर्च करते हैं। गांव की निचली जमीन पर तालाब बनाकर भी पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे जानवर पानी पीते हैं। ऐसे और भी कई तरीकों से बारिश के पानी को बचाकर रखते हैं। राजस्थान में पारंपरिक तौर पर क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जिसमें पालर पानी मिलता है। पालर पानी बारिश से मिलने वाला जल है, और दूसरा जहां वॉकर पानी मिलता है। वॉकर यानी जमीन से मिलने वाला पानी। पेज 23। दोनों में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। आजकल गहरे नलकूपों से भी जमीन के नीचे का पानी निकालकर उपयोग किया जाता है। यदि वर्षा हुई तो थार के लोग थोड़ी खेती भी कर लेते हैं। यहाँ के खेतों में बाजरा, मोठ नाम की दाल, तिल आदि हो जाते हैं। कम पानी में इनकी फसल उग जाती है। यही इनका मुख्य भोजन भी है। पेड़ों व झाड़ियों में होने वाले फलों को सुखाकर साल भर खाया जाता है। राजस्थान में शुरू से ही पानी सुंदर चीजों से जुड़ा हुआ है। पीने के पानी का बर्तन, कुओं के चबूतरे, पानी जमा करने के हौदी और उनके ढक्कन तक की खूब सजावट होती है। थार के समाज ने पानी की हर बूंद का सदुपयोग किया है, इसलिए वहां पानी के सही इस्तेमाल के बारे में आम जीवन में कहानियां, कहावतें, मुहावरे मिलते हैं। उदाहरण के रूप में वहां एक कहावत है कि घर में साधारण मेहमान आए तो मलाईदार दूध दो, और विशेष मेहमान हो तो एक ग्लास पानी दो। मेहमान इससे ज्यादा मांगे तो दूसरा ग्लास दूध का दो। यानी पानी दूध से ज्यादा कीमती है। लोक व्यवहार भी ऐसा है कि पानी की हर बूंद उपयोग में आ जाए। जैसलमेर में आज भी लोग लकड़ी की छोटी चौकी पर बैठकर नहाते हैं। उसके नीचे एक बर्तन रहता है। नहाने से गिरा पानी इसमें जमा होता है, जो जानवरों के काम आ जाता है। अब पशुपालन। रेगिस्तान में थोड़ी बारिश में घास उगाती है, इसलिए यहाँ पशुपालन बहुत होता है। भेड़, ऊंट, बकरी आदि पाले जाते हैं। पेज 24। भेड़ों से गडरियों को दूध और खाद के अलावा ऊन भी मिलती है। अक्टूबर के बाद गरड़िए अपना डेरा ऊंट पर लादकर चारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ झुंड हरियाणा राज्य में तो कुछ गुजरात या मध्य प्रदेश की तरफ दूर दूर तक जाते हैं। क्या तुम कभी रेत में दौड़े हो? यदि नहीं तो कभी नदी की सूखी रेत में दौड़कर देखना, बड़ी दिक्कत आएगी। क्या ऊंट को भी यही दिक्कत आती होगी? बालू के मैदान में ऊंट दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल लेता है। वह कई दिनों तक पानी पिए बगैर भी रह सकता है। इसलिए रेगिस्तान में ऊंट बहुत पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट का उपयोग हल चलाने के लिए व गाड़ी खींचने के लिए होता है। इसके अलावा कहीं आने जाने के लिए भी इनका साधन ऊंट ही होता है। ऊंटनी का दूध पिया जाता है। ऊंट की ऊन से रंग बिरंगे पट्टू यानी कंबल बुने जाते हैं। अब दीप्ति को मरुस्थल के बारे में काफी कुछ पता चल गया, पर वह जल्दी से जाकर खुद मरुस्थल देखना चाहती थी। अब इसी पेज नंबर 24 पर एक बॉक्स है, वहां एक राजस्थानी औरत लहंगा पहन के खूबसूरत नाच कर रही है। ये चित्र है और लिखा है बॉक्स में, थार की धुमक्कड़ जातियों में एक काल बेलिया जाति है। उसके अधिकतर पुरुष सांप का तमाशा दिखाते हैं। वहां की महिलाएं काले रंग का घाघरा कुर्ती पहनती हैं। उन पर चमकीले सितारे गोटे टंके होते हैं। वे जिस तरह बीन की धुन पर नाचती हैं, लगता है मानो नाग लहरा रहा हो। बॉक्स क्लोज्ड, पेज 25 अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, गरड़िए कहां से आते हैं? 2, रेगिस्तान में यातायात का साधन क्या है? 3, रेगिस्तान में किन किन चीजों की खेती होती है? 4, पानी की कमी क्यों होती है? इसकी पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं? 5, रेगिस्तान पर तस्वीर बनाओ। 6, पता करो कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे रह लेता है।